राजवीर की अरमान के साथ ठीक 11 बजे की नियुक्ति थी, इसलिए उसने सारी तैयारी कर ली थी। चूंकि वो अरमान के बारे में काफी शोध कर चुका था, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो किस विषय पर बात करेगा। सो वो जल्दी से तैयार होकर कुछ फाइलें हाथ में लेकर अरमान के कार्यालय की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जोया जाग चुकी थी, किंतु उसके पूरे शरीर में तीव्र पीड़ा हो रही थी। फिर भी वो उठी। धीरे धीरे उसने कपड़े पहने और एक और दर्द निवारक गोली खाई। इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे हॉल में जाने के लिए चल पड़ी। 5 मिनट का रास्ता उसे 25 मिनट में तय हुआ, पर उसने हार नहीं मानी और वो डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई। अरमान और अरहम उस समय वहां नाश्ता कर रहे थे। जोया के पहुंचते ही सकीना बी की चीख निकल गई, क्योंकि आज जोया बेहद भयावह लग रही थी। उन दोनों पागलों ने उसके चेहरे को इतना बुरी तरह मारा था कि वो बहुत ही विकृत और बदसूरत हो गया था। कोई भी उसे अचानक देखकर डर जाता। सकीना की चीख सुनकर दोनों भाई पीछे मुड़े और जोया को देखकर उनका क्रोध फिर से बढ़ गया। अरहम अचानक उठा और उसने जोया की बाजू को बहुत तेजी से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जोया को बहुत तेज दर्द हो रहा था, फिर भी उसने अपना दर्द छिपाया और बोली, क्यों, मैं यहां क्यों नहीं आ सकती? मुझे नाश्ता करना था, भूख लगी है, सो मैं यहां कुछ खाने आई हूं। इससे पहले कि अरहम कुछ कहता, अरमान बोला, अरहम उसे छोड़ो और आकर नाश्ता करो, और तुम अपने कमरे में जाओ, सकीना भी तुम्हारा नाश्ता वहीं ले आएगी। इससे पहले कि जोया कुछ कहती, सकीना भी तुरंत उसके पास आ गई और बोली, आप चलिए मैं आपका नाश्ता लाती हूँ, उससे पहले मैं आपकी मदद करती हूँ आपको कमरे तक पहुँचाने के लिए। तभी अरमान ने सकीना बी को चेतावनी देते हुए कहा, सकीना बी उसको अपने आप जाने दो, वो जैसे आई है वैसे ही जा भी सकती है, उसको कोई सहारा देने या मदद करने की कोशिश भी मत करना। अरमान की चेतावनी से सकीना भी बहुत डर गई थी। वो पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रही थी, इसलिए उसे अपने मालिक के क्रोध और उसकी अवज्ञा का परिणाम अच्छे से पता था। तभी अरहम जोया से बोला, अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, ये भद्दी और बदसूरत शक्ल देखकर मेरे मुंह से तो निवाला ही नहीं जा रहा है। जोया ने कुछ देर उन दोनों को देखा और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे तक पहुंचने में उसे फिर से 25-30 मिनट लगे। उसके कमरे में पहुंचते ही सकीना भी उसका नाश्ता ले आई थी। उसने जोया को हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। कितने दिनों बाद जोया को थोड़ा सा स्नेह मिला था। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए और सकीना भी उसकी हालत देखकर खुद भी रो पड़ी और दुआ करने लगी, ए मेरे मालिक, ऐसा दिन दिखाने से पहले तूने अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? किसी का साथ पाकर जोया भी बेइंतहा रो पड़ी। वे दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। फिर सकीना बी ने उसे चुप कराया और बोली, बेटा मैं जानती हूँ तेरे पे यहाँ क्या अत्याचार हो रहे हैं। बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बेहद क्रूर इंसान है। मेरी एक ही पोती है, उसी की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण के लिए मैं यहाँ काम करती हूँ। बहुत समय पहले मेरे बेटा बहू एक कार दुर्घटना में मर गए थे। उनकी 3 साल की बेटी थी जिसे मैं ही पालती हूँ। उसका मेरे अलावा और मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा खुदा जानता है, मेरा दिल बेहद रोता है तेरी ये हालत देखकर, पर बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। जोया ने उनके दोनों हाथ थाम लिए। रहने दीजिए अम्मा, आप परेशान नहीं हो, ये मेरी लड़ाई है और मैं अपने सभी को खो चुकी हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप पर या किसी पर भी कोई आंच आए। आपने मेरे लिए इतना सोचा वही काफी है। अब आप जाइए, आपका ज्यादा देर इस कमरे में रुकना सही नहीं है। सकीना बी ने सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। जोया ने पहले नाश्ता किया और एक मरहम अपने चेहरे और शरीर पर लगाया। ये घाव हल्का करने वाला मरहम था जो सकीना बी ने उसे दिया था। उसके बाद बिस्तर पर सीधी लेट गई और उसे आगे क्या करना है सोचने लगी। दूसरी ओर अरमान अपने कार्यालय आ गया था और राजवीर भी उसके कार्यालय पहुंच चुका था। ठीक 11 बजे अरमान और राजवीर आमने सामने थे। तभी अरमान राजवीर से बोला, मिस्टर राजवीर, मैं आपकी ही फाइल देख रहा था। आप मुंबई में खुद की निर्माण कंपनी शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मेरी लोनावाला के पास वाली जमीन पसंद आ रही है ना? बिल्कुल अरमान साहब, राजवीर ने कहा। वैसे मिस्टर राजवीर, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, मेरे पास आकर मेरी ही जमीन आप खरीदना चाहते हैं और वो भी वही काम करने के लिए जो मेरा है। आप मेरे ही प्रतिद्वंदी बनना चाहते हो? आप अच्छे से जानते हैं कि शहर की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी मेरी है। वेल अरमान साहब, मैं यहाँ आपसे कोई प्रतिस्पर्धा करने नहीं आया हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो केवल इस शहर में रोजी रोटी कमाने के लिए नया काम शुरू करना चाहता हूँ। ओह, समझ गया, अरमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरे पास आपके लिए एक और सुझाव है। राजवीर, कैसा सुझाव? वो ये कि अगर आप चाहें तो आप अपनी कंपनी शुरू ना करके आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको 40% की साझेदारी प्रदान करता हूँ। आपके पास निवेश करने के लिए काफी पैसा है, सो आप हमारी कंपनी में निवेश कीजिए, ठीक है? मैं आपको 24 घंटे का समय देता हूँ, आप अच्छे से सोच लीजिए और अपना निर्णय बता दीजिए। राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। निर्णय तो वो ले चुका था। वो उठा और अरमान से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। अरमान उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। दूसरी ओर जोया को थोड़ा बेहतर लग रहा था और मरहम की वजह से उसके निशान काफी हल्के पड़ चुके थे। बस नीले निशान और हल्की हल्की सी सूजन बाकी थी। वो उठी और उसने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। नहाकर वो थोड़ा हल्का महसूस करेगी और अच्छे से सोच पाएगी आगे क्या करना है। सो उसने वार्डरोब से एक हल्के हरे रंग का सूट लिया और बाथरूम में चली गई। उसे गए अभी कुछ ही समय हुआ था कि अचानक अरहम महा आधम का